समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून आकर्षिता। यू ट्यून टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट आकर्षिता। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi holds round table with CEOs of leading US tech companies in New York, urges them to foster collaborations across various sectors.
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा।
Watching child pornography in private is crime under POXO Act, says Supreme Court.
श्रीलंका में नेशनल पीपल्स पावर पार्टी ने के नेता अनुरा कुमार दिशानायके ने आज 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
एंड किरण राव डायरेक्टेड लापता लेडीज इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2025। एंड नाउ आकर्षिता, इज टाइम फॉर अ सेगमेंट डेटलाइन इंडियन व्हिच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और द ग्लोबल लेवल। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस।
हर भाषा की अपनी खूबसूरती होती है। भारत की बात करें तो हर थोड़ी दूर पर भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाता है। या तो हो गई बोलचाल की भाषा, लेकिन जो बधिर हैं उनकी भी एक खास भाषा होती है जिसे हम सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेजेस कहते हैं। हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। ये एक खास दिन है जब दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व और बधिर लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। सांकेतिक भाषाएं मानव इतिहास जितनी पुरानी हैं, ये भाषाएं बधिर समुदायों के लिए संचार का मुख्य साधन है। सांकेतिक भाषा ने बधिर समुदाय के लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और विचारों का आदान प्रदान करने का एक अनूठा तरीका प्रदान किया है।
Yes, the International Day of Sign Languages is observed each year on September 23rd, that is today. This day provides a special occasion to advocate for the preservation and promotion of the linguistic identity and cultural richness of all deaf individuals and those who use sign languages. During the 2024 celebration of Sign Language Day, the focus will be on emphasizing the unity that sign languages bring. And let's also touch on the history of the sign languages. The United Nations General Assembly, UNGA, declared September 23rd as the International Day of Sign Languages in 2018 as part of its efforts to promote inclusivity and recognize the diversity of languages. And this date coincides with the establishment of the World Federation of the Deaf, WFD, in 1951.
और अभिषेक, सांकेतिक भाषा सीखना जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि ये एक पूरी तरह से अलग तरह की भाषा है जो दृश्य संकेतों और हाव भाव का इस्तेमाल करके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करती है। हालांकि एक बार जब आप इसके आधार को समझ लेते हैं, जैसे अभिषेक होता है कि हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, तो उसका एक ग्रामर होता है, एक बेस होता है, तो जब हम उसको समझ लेते हैं तो जो लैंग्वेज सीखना है वो बहुत आसान हो जाता है। उसी तरीके से सांकेतिक भाषा का जब हम आधार, एक उसका फंडामेंटल सीख लेते हैं तो वो इतनी कठिन भी नहीं रहती, उसको आसानी से सीखा जा सकता है और ये काफी रोचक भी है। और शुरुआत में सांकेतिक भाषाओं को अक्सर एक विकृति या कमजोरी माना जाता था। कई स्कूलों और संस्थानों में डेफ चिल्ड्रन को बोलना सिखाने के लिए मजबूर किया जाता था। और सांकेतिक भाषा का उपयोग करने से रोका जाता था। हालांकि समय के साथ सांकेतिक भाषा को एक पूर्ण विकसित भाषा के रूप में मान्यता मिली और बधिर समुदाय के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई तेज हुई। और अभिषेक, आजकल हम देखते हैं कि जब हम न्यूज सुनते हैं या कुछ भी देखते हैं तो हम अक्सर देखते हैं जो हमारे चैनल्स हैं, जैसे हम दूरदर्शन पे देखते हैं कि वो साइन लैंग्वेजेस में भी हमें समाचार बताते रहते हैं। तो एक तरीके से जो बधिर जो है बच्चे हैं उनके लिए भी धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। आज उनकी समस्याओं को हम देख रहे हैं और उसका भी एक सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। और कैसे?
यस, एब्सोल्युटली। द मोस्ट फेमस डेफ पर्सन दैट कम्स टू माइंड आकर्षिता इज हेलन केलर।
राइट।
एंड हेलन केलर्स ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, विच वॉज पब्लिश इन 1903, पब्लिशाइज्ड हर एजुकेशन एंड लाइफ विद हर मेंटर एन सुलिवन, एंड इट वॉज एडेप्टेड एज अ प्ले बाय विलियम गिब्सन, एंड दिस वॉज ऑल्सो adapted as a film under the same title, The Miracle Worker. And during that time, I mean, sign language was not that much evolved as it is now, isn't it?
Right. और हम देखते हैं कि जो the story of my life है, जैसा कि हमने सबने पढ़ा ही होगा एक बार उसको, और उसमें जिस तरीके लिखते हैं कि जो water है, उसमें बताते हैं कि वो कैसे water को वो पहचानती है, कैसे वो sign language से, वो किसी और भाषा का प्रयोग ना करके, वो एक sign language से उसको जानती है कि हाँ, इसको टच करने से दिस इज वाटर। तो एक तरीके से जितने भी बधिर लोग हैं या बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं, उनके लिए जो साइन लैंग्वेजेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके कम्युनिकेशन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो हमको इसको प्रमोट करना चाहिए।
एब्सोल्युटली। एंड लेट्स आल्सो टच अपॉन द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2024। एंड थीम फॉर दिस इयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस इज साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स, emphasizing the need for the country leaders to recognize and promote sign language rights in their respective nations. In fact, the World Federation of the Deaf is encouraging government officials to sign this year's theme in the National Sign Language to show their support. And sign languages are fully fledged visual languages structurally distinct from the spoken languages that pass your message through the use of gestures or symbols. And sign language is not universal. Instead, each country has developed its own unique sign language system.
सांकेतिक भाषा का विकास विभिन्न समुदायों में अनौपचारिक रूप से हुआ। पहले यह मुख्यतः सामाजिक संपर्क के लिए प्रयोग की जाती थी। समय के साथ इसे एक संरचित भाषा के रूप में विकसित किया गया और आज कई देशों में इसकी आधिकारिक मान्यता है। शोध और अध्ययन के माध्यम से सांकेतिक भाषाओं की संरचना और उपयोग पर अधिक जानकारी मिली है। और अभिषेक, हम देख रहे हैं आजकल इंटरनेशनल फोरम्स में भी साइन लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत से ऐसे युवा हैं जो एज अ साइन लैंग्वेजेस को उन्होंने अपनाकर अपनी एजुकेशन ली है और काफी अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने उनकी जो कम्युनिकेशन है वो उसको एक मीडियम मिल गया है।
एब्सोल्युटली। डिड यू नो आकर्षिता दैट देयर आर ओवर 300 डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस यूज्ड वर्ल्ड वाइड, ईच विद इट्स ओन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर लाइक यू आर सेइंग।
राइट।
एंड सो टू कंक्लूड आवर डिस्कशन टुडे ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, लेट मी शेयर विद द लिसनर्स व्हाट जॉर्ज वेडिट्स वेरी फेमसली सेड: Sign language is the noblest gift God has given to deaf people. So happy International Day of Sign Languages.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Nagaland University has started a new chapter of growth, collaboration and opportunity with the commencement of the Center of Excellence for Foreign Languages. And Chief Secretary J. Alam inaugurated the center at the Department of Linguistics in its Kohima campus on September 9th. Let's hear more from a correspondent.
The Initiative of Investment and Development Authority of Nagaland, IDAN, two MOUs were signed between state government and NU and ARMS Incorporation and NU on September 5 in the presence of Chief Minister Nipirio and the Ambassador of Japan to India. This MOU is initially signed for an agreement of 3 years, and a major objective of the MOU aims to establish Nagaland as a hub for foreign language learning through the implementation of COEFL with the Department of Linguistics as the host department. It will not only offer students a wider range of educational courses, but also foster youth employment opportunities both domestically and internationally. Additionally, this collaboration will enhance skill development and create employment opportunities for young professionals working abroad. The center is receiving generous financial assistance from the state government through an innovation fund under Planning and Transformation Department, while the major percentage of the fund will be used for fee subsidy. The other MOU is based on the mutual interest in the promotion of Japanese language and culture and strengthening the capacity in employability and skill development. Two types of certificates are being offered. First is for students who just want to learn Japanese language and culture, and the other is for those who are seeking jobs in Japan. Altogether, 33 students have joined the first batch in COEFL for the six-month certificate course in Japanese. For Barikrama, Jonas Yantan from Kohima.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में आज ही के दिन वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ 12 करोड़ 37 लाख परिवारों के लगभग 55 करोड़ लोग ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में इस महत्वाकांक्षी योजना ने करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लगभग 8 करोड़ लाभार्थियों ने कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है और इस पर सरकार द्वारा 1,07,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। इस योजना के तहत लगभग 13,000 निजी अस्पतालों सहित 29,000 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। यह योजना दिल्ली, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी दिया है। इससे लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
India's public distribution system is one of the largest food supply systems in the world. In order to modernize the public distribution system and ensure food security to the poor, Gujarat's government has set up state's first Annapurti Grain ATM in Bhavnagar to supply ration to the poor. Let's know more about this unique initiative from our Ahmedabad correspondent.
The launch of the first Annapurna Grain ATM in Gujarat is a landmark initiative by Government of Gujarat. It is a place where poor people can withdraw wheat and rice through their ration card. Inaugurating this initiative, Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Nimuben Babhania said, even if people going to the ATM do not know how to write their names, with their biometric thumbs they can get what they want. Annapurti Anaj ATM can hold 1,000 kgs of wheat and rice. This automatic machine can give 25 to 35 kgs of grain in just 40 seconds and can be used around the clock. Thus, people will no longer need to stand in long queues. The state-of-the-art system ensures food security to the economically weaker sections of the state. Besides, it will also be helpful in eliminating problems like shortage of stock and curb malpractices in ration shops. For Parikrama, this is Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
Filmmaker Kiran Rao's comedy drama Lapata Ladies has been chosen and submitted as India's official entry for the Oscars 2025 in the Best Foreign Film category. We have more from our correspondent Payal Sharma.
Filmmaker Kiran Rao's comedy drama Lapata Ladies has been chosen and submitted as India's official entry for the Oscars 2025 in the Best Foreign Film category. The Film Federation of India has confirmed this, adding that the 13-member selected committee headed by Assamese director Janu Barua unanimously decided on the film produced by Aamir Khan and Kiran Rao. The jury's citation on Lapata Ladies stated that well-defined, powerful characters in one world, a Lapata Ladies perfectly captures the diversity of Indian women, which is a strange mixture of submission and dominance. The film is a slice of life comedy about the misadventures of two young brides who become separated on the same train but with different grooms. It shows you that women can happily desire to be homemakers as well as rebel. A story that can simultaneously be seen as one that needs change and one that brings about change. Lapata Ladies is a film that can engage, entertain and make sense not just to women in India but universally as well. This year, popular films like Animal, Malayalam National Award winning Attam and Cannes winner All We Imagine as Light were among the contenders. Payal Sharma for Parikrama.
आपको बता दें कि अगले साल 97वें ऑस्कर्स अवार्ड्स का आयोजन 2 मार्च 2025 को हॉलीवुड में ओवेशन के डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में होगा। इसका सीधा प्रसारण एबीसी चैनल पर किया जाएगा।
And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day. In today's episode, we bring you the story of the great revolutionary freedom fighter, Rao Tularam. The day marks the death anniversary of this great leader of the First War of Indian Independence of 1857, who fought against the colonial British forces in Haryana, where he is considered a state hero.
Rao Tularam was born on 9th December 1825 in Rampura suburb of Rewari to Puran Singh and Gyan Kaur, and ruled Rewari for 18 years from 1839 to 1857. In 1857, after the rebellion in Meerut and other places, he rose up to support the uprising.
He also helped rebel forces fighting in Delhi with soldiers and resources. He also temporarily succeeded in driving out the British from the southwest Haryana during the rebellion.
On 17th May 1857, Rao Tularam, along with his cousin Rao Gopal Dev and a group of his followers, deposed the local Tehsildar. He raised a force of about 5,000 soldiers and set up a workshop in the fort of Rampura for manufacturing the guns and other ammunition.
Rao helped Emperor Bahadur Shah and other rebel forces who were waging war against the British in Delhi and sent 45,000 rupees along with large quantities of necessary commodities to him. But this help could not protect Delhi, which fell to the British on 20th September 1857.
Soon after, Brigadier General Showers led a column from Delhi to attack and destroy Rao and his followers in Rewari. Showers sent a messenger to Tularam, telling him that if he surrenders, along with his guns and arms, he would be treated on merits. But Tularam turned down the proposal.
British officer then sent a strong column under Colonel Gerard on November 10, 1857, which occupied the abandoned fort of Rampura. On November 16, Colonel Gerard marched to Narnaul, where the rebel forces led by Rao Tularam's cousin, Rao Krishan Singh, fought against them.
Tularam's forces fought bravely against the British, as the first charge of rebel forces scattered the British. Colonel Gerard was mortally wounded in the attack. Several other British officers were also killed or injured.
But the British forces successfully retaliated with full force and heavy bombardment. The Battle of Narnaul was one of the most decisive battles of 1857.
After suffering loss and destruction in the Battle of Narnaul, Rao Tularam moved in to Rajasthan and joined the forces of Tantia Tope. But the forces of Tantia Tope were also defeated by British in the Battle of Sikar in Rajasthan. Thereafter, Rao left India to seek help from the Shah of Iran, Dost Muhammad Khan, the ruler of Emirate of Afghanistan, and Alexander II, the Emperor of Russia, against the British colonial empire.
For his defiance, Rao Tularam's estates were confiscated by the British. On 23rd September 1863, he died in Kabul in Afghanistan at the age of 38 due to an infection that spread throughout his body. Till his last breath, Rao attempted to forge alliances to fight against British imperialism.
A two-day Shahidi Mela is held annually in September at Rampura suburb of Rewari city to commemorate the death anniversary of Tularam. The government of India issued a postage stamp on 23rd September 2001 featuring Rao Tularam. India is forever indebted to the selfless service and sacrifice of martyrs like Rao Tularam.
In business news today, India's domestic benchmark indices soared to new lifetime highs in today's trade amid strong global cues. Sensex touched new high of 84,980 before settling above 84,900, and the Nifty also hit a record high of 25,956 before closing the trade with over 0.5% gain. At close, the Sensex rose 384 points or 0.4% at 84,928, and the NSE Nifty was up 148 points or 0.5% at 25,939. And now on to some sports news.
BCCI ने कानपुर में बांग्लादेश के साथ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। मैच के लिए भारतीय टीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मैच 27 सितंबर से कानपुर में शुरू होगा। और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। सब कुछ कह लेने के बाद कुछ ऐसा है जो रह जाता है, तुम उसको मत वाणी देना। वो छाया है मेरे पावन विश्वासों की, वो पूंजी है मेरे गूंगे अभ्यासों की। ये सारी रचना का क्रम है, बस इतना ही मैं हूं। ये पंक्तियां हैं प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। आज उनकी पुण्यतिथि है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी रचा। आकाशवाणी में सहायक निर्माता, दिनमान के उप संपादक तथा पराग के संपादक रहे। यद्यपि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ और चर्चे और चरखे स्तंभ में दिनमान में छपे उनके लेख काफी लोकप्रिय हुए। उनकी मुख्य रचनाएं हैं खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, बकरी, बतूता का जूता आदि। सन 1983 में कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया।
Raja Ramanna passed away on this day in 2004. He was an Indian physicist. He was the director of India's nuclear program in the late 1960s and early 1970s, which culminated in Smiling Buddha, India's first successful nuclear program. May 1974, he was awarded the Padma Bhushan, India's second highest civilian decoration, in 1975. Ramanna died in Mumbai in 2004 at the age of 79. And also, Akarshita, Kedarnath Bhattacharya was born on this day in 1957. Professionally known as Kumar Sanu, he is an Indian playback singer who primarily sings in Hindi film songs. Apart from Hindi, he has also sung in other languages. Both in West Bengal and Bangladesh, he holds the record for winning 5 consecutive Filmfare Award for Best Male Playback Singer from 1991 to 1995. He holds the Guinness World Record for recording the maximum number of songs, 28 songs in a single day since 1993. For his contribution to Indian cinema and music, he was awarded the Padma Shri in 2009 by the Government of India. And many of his tracks feature in BBC's Top 40 Bollywood soundtracks of all time. Let's listen in to one of his hit songs.
सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। आज हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि एवं निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। राष्ट्रकवि दिनकर आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। उनको राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रोत क्रांतिपूर्ण संघर्ष की प्रेरणा देने वाली ओजस्वी कविताओं के कारण असीम लोकप्रियता मिली। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, हाहाकार, चक्रव्यूह आदि। उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
Yes, and Prem Chopra was born on this day in 1935. He's an actor in Hindi films. He has acted in 380 films over a span of over 60 years.
और वर्ष 1973 में आई फिल्म बॉबी प्रेम चोपड़ा के सिनेमा करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। भारतीय सिनेमा के पहले शोमैन राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वे एक मवाली गुंडे की एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे। इस फिल्म में उनका बोला गया ये संवाद, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, दर्शकों के जहन में आज भी ताजा है। आइए सुनते हैं उनका ये डायलॉग।
प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा।
Chopra completed his schooling and college from Shimla after his father, who was a government servant, got transferred there. He took part in college dramatics enthusiastically. At his father's insistence, he completed his graduation and then went to Bombay. To survive in the first life of Bombay, he took up a job with the Times of India while trying to gain a foothold in the film industry. He looked after the circulation of the paper in Bengal, Orissa and Bihar and was required to tour 20 days a month. Now, while travelling by the suburban train one day, a stranger accosted him and asked if he was interested in joining films. Chopra nodded in agreement and went with the stranger to Ranjit Studios, where the producers of Chaudhary Karnail Singh were in search of a hero. Jagjit Sethi, a Punjabi producer, gave him a break as the hero of the established star Jabin Jaleel in Chaudhary Karnail Singh, a Punjabi film. His debut film was a Hindi Muslim romantic love story set against the backdrop of Indo-Pak partition, and it turned out to be a big hit. The film won the National Film Award for Best Feature Film in Punjabi. He was paid ₹2,500 for his debut film. On the sets of Wo Kaun Thi, which had Manoj Kumar as the lead hero, Prem met Manoj for the first time. Manoj offered Prem a positive role in Shahid, for which Manoj was a presenter. During the shooting of Mere Shaadi Karne Chala, someone suggested that he become a villain. He continued working with the Times of India when he was already a part of box office hits like Nishan, Sikandar A. Azam and in 1965 and Sagai, Mera Saya in 1966. After Teesri Manzil and Upkar, he was flooded with films as a villain. And also Akarshita Tanuja Mukherjee, known mononymously as Tanuja, was born on this day. She's an Indian actress who predominantly works in Hindi film industry. Part of the Mukherjee Samarth family, she's the daughter of actress Shobhna Samarth and producer Kumar Sen Samarth, and was married to filmmaker Shomu Mukherjee, with whom she has two daughters, actress Kajol and Tanisha. A recipient of two Filmfare Awards, Tanuja is best known for her roles in Hindi and Bengali films. And also, Srijit Mukherjee was born on this day in 1977. He is an Indian film director and screenwriter who predominantly works in Bengali cinema. His regular collaboration with veteran actor Prasenjit Chatterjee brought him into the limelight. His first feature film, Autograph, in 2010, was a critical and commercial success, where he had written the script with Chatterjee in mind. His fifth film, Jatishwar, won 4 national awards at India's 61st National Film Awards in 2014. He won the National Film Award for Best Direction and Best Original Screenplay for his sixth film, Chotu Shokun, at India's 62nd National Film Awards. His eighth film, Raj Kahini, has been remade into a Hindi film titled Begum Jaan, starring Vidya Balan, in 2017. His 2018 release, Ek Je Chilo Raja, won the Best Bengali Film Award at India's 66th National Film Awards. His 2019 film, Gumnami, won him the Best Bengali Film and Best Adapted Screenplay Awards at the 67th National Film Awards. And also, Bruce Frederick Joseph Springsteen was born on this day in 1949. He's an American rock singer, songwriter and guitarist. Nicknamed The Boss, he has released 21 studio albums during a career spanning 6 decades, most of which feature his backing band, the E Street Band. Let's listen in to his hit track, Born in the USA. John William Coltrane was born on this day in 1926. He was an American jazz saxophonist, bandleader and composer. Let's listen to his hit track, Blue Monk. And Also, Ray Charles Robinson was born on this day in 1930. He was an American singer, songwriter, musician and composer. He's regarded as one of the most iconic and influential musicians in history. And let's listen to his hit track, Seven Spanish Angels, and his famous album, Half Nelson.
Arms around him, whispered God will keep us free. They could hear the riders coming.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अभिषेक को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।